नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर लौटी टीम इंडिया का आज मुंबई में भव्य स्वागत। लाखों की संख्या में प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। नीट पेपर लीक मामले में पटना की सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए और बढ़ाई। धनबाद से गिरफ्तार आरोपी अमन सिंह भी 4 दिनों की सीबीआई रिमांड पर। और बिहार के 13 आकांक्षी जिलों और 61 आकांक्षी प्रखंडों में आज से 3 महीने तक चलने वाले संपूर्णता अभियान की हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर लौटी टीम इंडिया का आज मुंबई में भव्य स्वागत किया गया। टीम इंडिया के सदस्यों ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से शुरू हुई विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया। यह परेड गेटवे ऑफ इंडिया पर जा रही है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर एक अद्भुत और अकल्पनीय जनसैलाब दिख रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम से मुलाकात की। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह सहित कई खिलाड़ी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आज सुबह नई दिल्ली पहुंचने पर भारतीय क्रिकेट टीम का भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
बारबाडोस से कल शाम विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर निकला एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। अपने सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर हर कोई बेताब हो उठा। सब अपने चहेते सुपरस्टार्स के साथ एक सेल्फी लेना चाह रहे थे। रनवे से लेकर एयरपोर्ट से बाहर आने तक भारतीय क्रिकेट के सितारों ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। जब भी मौका मिला वे फैंस के साथ सेल्फी लेते और उनका अभिवादन स्वीकार करते आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर फैंस का हुजूम ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए उनके इस्तकबाल को तैयार था। जश्न का ये माहौल जल्द ही अपने शबाब पर पहुंच गया जब टीम के कुछ खिलाड़ी अपने फैंस के बीच जाकर नाचने गाने लगे। एयरपोर्ट से बाहर आकर टीम इंडिया के खिलाड़ी 2 विशेष बसों से अपने होटल के लिए रवाना हुए। होटल पहुंचने पर कैप्टन रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप जीत पर विशेष तौर पर तैयार किया गया केक काटा। यह जश्न यहीं नहीं थमा, खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंचे। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान वैशाली जिले के लालगंज में सबसे अधिक 95.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्से में अधिकांश स्थानों जबकि दक्षिणी हिस्से में कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। हिमालय की तलहटी वाले जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग के अधिकांश स्थानों जबकि दक्षिण भाग के अनेक स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी से अति भारी वर्षा हिमालय की तलहटी के जिलों के एक या दो स्थानों में होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है।
नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी बेनीबाद में खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है। इधर महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के ठेंगड़ा घाट में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। कटिहार के छावा में नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। परमान नदी अररिया में लाल निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद नदी का दबाव कई तटबंधों पर बना हुआ है।
कोसी नदी का पानी किशनपुर प्रखंड के मौजहा पंचायत के निचले इलाकों में फैल गया है। कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन की ओर से अब तक प्रभावित क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इधर पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर ढोली, बनैनिया, लोकहा और भपतियाही पंचायत के कई गाँव में कोसी का पानी फैलने लगा है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। इन इलाकों में लोगों के सामने पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से अहमदाबाद प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित है।
अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत के बेलगाछी गांव में महानंदा नदी का कटाव काफी तेज हो गया है। इससे पूरे गांव पर खतरा मंडराने लगा है। गांव का एकमात्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय और उससे जुड़ा आंगनबाड़ी केंद्र कटाव के मुहाने से केवल 50 मीटर दूर रह गया है। इस बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि कटाव क्षेत्र में बाढ़ निरोधात्मक कार्य के जरिए कटाव रोकने की कोशिश की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कमलावला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं।
दरभंगा जिले के गौरा बोराम प्रखंड क्षेत्र में कमला बलान नदी का पानी चतरा, रही टोल, बोराम, मुसहरी और मनसारा समेत बांध के भीतर बसे कई गांव में फैल गया है। सड़कों पर पानी आ जाने के चलते लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। किसानों की मूंग और धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। बाढ़ प्रभावित गांव के लोग पहले पश्चिमी तटबंध पर शरण लेते रहे हैं, लेकिन इस बार इस तटबंध पर निर्माण कार्य के चलते लोगों को ऊंची जगह की तलाश करनी पड़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
खगड़िया में कोसी और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिले के चौथम और बेलदौर प्रखंड के कई गांवों में कोसी और बागमती नदी के उफान से कटाव जारी है। चौथम प्रखंड के दियारा क्षेत्र अंतर्गत सरसवा पंचायत के सिसवा छुट्टी मोहनपुर पंचायत के अग्रहण गांव में भीषण कटाव हो रहा है। सिसवा गांव में कई बीघा उपजाऊ जमीन नदी के गर्भ में समा गई है। नदी की मुख्य धारा आबादी तक पहुँचने लगी है, जिस कारण लोगों में डर का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन।
इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पश्चिम चंपारण जिले के मधुबनी प्रखंड अंतर्गत तमकोहवा में बना पुलिया और अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया। 6 महीने पहले इस पुलिया का निर्माण 6 लाख रुपए की लागत से किया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि पुल गिरने के कारणों की जांच कराई जाएगी। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में बिहार में 12 पुल गिर चुके हैं। याचिकाकर्ता ने राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में बने सभी पुलों की संरचना की जांच कराने का आदेश देने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है।
रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है।
जिंदगी है यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है, इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून।
पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है।
दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है।
नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगौड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर।
आजाद भारत के अपने कानून।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में पटना की सीबीआई अदालत ने चार आरोपियों की रिमांड अवधि चार दिनों के लिए और बढ़ा दी है। आज सीबीआई ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सभी आठ आरोपियों को अदालत में पेश किया। जांच एजेंसी ने चार आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इधर धनबाद से गिरफ्तार एक अन्य आरोपी अमन सिंह को भी अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने अदालत में अमन सिंह को चार दिनों के रिमांड पर लेने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बिहार के 13 आकांक्षी जिलों और 61 आकांक्षी प्रखंडों समेत देश भर में आज से 3 महीने तक चलने वाला संपूर्णता अभियान शुरू हुआ। वैशाली जिले के लालगंज में अभियान की शुरुआत करते हुए नीति आयोग के संयुक्त निदेशक एसएम खान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।
देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कुछ जिलों का, जो कि बहुत पिछले हुए थे इंडिकेटर्स में, उनका चयन किया था। लगभग 500 के आसपास डिस्ट्रिक्ट थे, उसको और आगे बढ़ाते हुए लास्ट ईयर वो 2018 में किया गया था। लास्ट ईयर हमने ब्लॉक तक जाने की सोची और बिहार में लगभग 52 जिलों के 61 ब्लॉक्स हैं, जिसमें कि हम एक्सपेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स कहलाते हैं। उसमें 6 इंडिकेटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से और जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी महोदय हैं और जो यहाँ के अन्य अधिकारी हैं।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार आनंद शेखर ने बताया कि संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिलों और आकांक्षी प्रखंडों में 6 संकेतकों स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जीविका और शिक्षा पर आधारित परिपूर्णता हासिल करने के लिए 30 सितंबर तक अनवरत प्रयास किए जाएंगे।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, दोनों का ये मकसद है कि चयनित जिलों में और देश के चयनित 500 ब्लॉकों में बहुत तेजी से लोगों को सेवाएं अदा की जाए। इस कार्यक्रम को और प्रखर बनाने के लिए सूचकांक यानी इंडिकेटर्स तय किए गए हैं। संपूर्णता अभियान ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, उनको अगले 3 महीने में संतृप्त करने का कार्यक्रम तैयार किया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इन 6 आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स पर काम करेंगे और इसे पूरी तरीके से सैचुरेट करेंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का 3रा कार्यकाल है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने आज भभुआ के सहकारिता कार्यालय में आयोजित एक समारोह में 43 पैक्स के लिए गोदाम निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। श्री कुमार ने कहा कि इन गोदामों की कुल क्षमता 36,000 मीट्रिक टन होगी। मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के छव्वा गांव में आम तोड़ने के विवाद में मां बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में कल एक युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने बाटा फैक्ट्री के पास आगजनी कर प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर लौटी टीम इंडिया का आज मुंबई में भव्य स्वागत। लाखों की संख्या में प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। लीक पेपर लीक मामले में पटना की सीबीआई अदालत ने चार आरोपियों की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए और बढ़ाई। धनबाद से गिरफ्तार आरोपी अमन सिंह भी 4 दिनों की सीबीआई रिमांड पर। और बिहार के 13 आकांक्षी जिलों और 61 आकांक्षी प्रखंडों में आज से 3 महीने तक चलने वाले संपूर्णता अभियान की हुई शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।